हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। विधिक ने आंशी को फिर से ढूंढ लिया था। वो उसके अपार्टमेंट में था। आंशी ना चाहते हुए भी फिर से उसके चंगुल में फंस गई। वो अभी भी इस बात को लेकर हैरान थी कि विधिक ने उसे ढूंढा कैसे होगा। विधिक उसे किस कर रहा था तब आंशी ने उसे खुद से अलग किया। तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? आंशी ने विधिक से पूछा। मुझे पता था तुम जिंदा हो। अगर मरी होती तो तुम्हारी लाश उस जगह मिल जाती जहाँ वो क्रूज रुका हुआ था। तुम्हें बहुत ढूंढा, लंदन तक आया, पर तुम नहीं मिली। फिर सोचा तुम्हारी शोक सभा रखवा देता हूँ ताकि तुम भी निश्चिंत हो जाओ और कोई ना कोई गलती कर बैठो। मुझे थोड़ा टाइम जरूर लगा, पर तुम वापस आ गई थी। तुम्हारे यहाँ वापस आते ही मेरे आदमियों ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया था, पर मैं तुम्हें और रिलैक्स होने का मौका दे रहा था ताकि तुम बेफिक्र होकर थोड़ी ही सही पर इस नई आज़ादी को एंजॉय कर सको। आज़ादी? उसके मुंह से आज़ादी शब्द सुनकर आंशी को हैरानी हुई। हाँ आज़ादी बटरफ्लाई, अब से हमेशा तुम्हें मेरी बाहों के कैद में रहना है। अब मुझे इस बात का डर भी नहीं कि मेरी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। विधिक की बातें आंशी के दिल में डर पैदा कर रही थी। उसने कुछ जाहिर नहीं किया और अपना खाना उठाकर बाहर डाइनिंग टेबल पर आ गई। वो अकेले खाना खा रही थी तभी विधिक उसके पास आकर बैठ गया। वेरी बैड मैनर्स बटरफ्लाई, अपने होने वाले पति से खाने तक का नहीं पूछा। तुम्हें देखकर पहले वाली वाइब भी नहीं आ रही, तुम बहुत बदल गई हो। जिसने अपनी जिंदगी के 120 घंटे टॉर्चर झेला हो वो अपने आप बदल जाता है। मेरी उस आदमी से कोई दुश्मनी नहीं थी, तुम्हारी वजह से उसने मेरे साथ वो सब किया, आंशी ने गुस्से में कहा। लगता है मेरी बटरफ्लाई धीरे धीरे वापस आ रही है। गुस्सा मत हो, और तुम्हें क्या लगता है उसने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया और मैं उसे इतनी आसानी से जाने देता? जिस कमरे में उसने तुम्हें रखा था उस कमरे में पूरे 5 दिन तक पड़ा रहा वो बेवकूफ। उसने तुम्हें जिस केज में रखा था वो तो नॉर्मल सा था, मेरे साथ काम करके भी ठीक से कुछ नहीं सीख पाया। पता है उसकी मौत कैसे हुई? करंट लगने की वजह से। मैंने पूरे कमरे को ऐसे तैयार कराया कि वो जहाँ भी पैर रखेगा उसे एक जोरदार बिजली का झटका लगेगा। उसकी तो लाश तक नहीं बची थी, बची थी तो सिर्फ राख, जलकर खाक हो गया बेचारा। वैसे तो वो सब डिजर्व भी करता था, मुझे धोखा देने वाले लोगों का यही हाल होता है। विधिक जानबूझकर आंशी को हर एक बात डिटेल में बता रहा था ताकि गलती से भी वो उसके खिलाफ कोई कदम ना उठा सके। ये सब बताते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, आंशी ने उसे आंखें दिखाकर कहा। लगता है अब तुम बिल्कुल मेरे टक्कर की बन गई हो। कितना मजा आएगा जब दोनों मिलकर इस काम को अच्छे से संभालेंगे, विधिक ने मुस्कुरा कर कहा। आंशी का खाना खत्म हो गया था। उसने अपनी प्लेट उठाई और किचन में जाते हुए बोली, किसी खुशफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारे काम में तुम्हारा साथ दूंगी। बहुत नॉर्मल तरीके से कह रही हूँ, मेरी लाइफ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। आंशी की बातों ने विधिक को गुस्सा दिला दिया। वो तेज कदमों से चलकर उसके पीछे गया और उसे अपने दोनों हाथों से पकड़कर दीवार के लगा दिया। पिछले 8 महीनों से मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ, कुछ भी ऐसा मत करना जिसकी वजह से मैं खुद को सजा देने पर मजबूर हो जाऊँ। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। विधिक की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। कोई खास बात नहीं, तुम खुद के साथ कोई गलत करोगे भी तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, आंशी ने उसे दूर धकेला और अंदर जाने लगी। तुमने मुझे बहुत कम समझ रखा है आंशी, तुम्हें ये क्यों लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत होगा तो तुम भी उस अंजाम से बच पाओगी? विधिक उसके पीछे पीछे उसके कमरे में गया। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और अपने शर्ट के बटन खोलने लगा। चलो अधूरा काम पूरा करते हैं। इस बार सच में आंशी के मन में डर पैदा हो रहा था। वो जल्दी से उठकर बैठी। तो अब क्या तुम मेरे साथ जबरदस्ती करोगे? वैसे कर भी सकते हो, तुम जैसे गैंगस्टर से और उम्मीद भी क्या की जा सकती हैं? उसकी बात सुनकर विधिक ने फिर से अपने शर्ट के बटन बंद कर दिए और आंशी के पास आकर बैठ गया। उसने नम आंखों से आंशी के गाल पर प्यार से हाथ रखकर कहा, बेबी क्यों कर रही हो ऐसा? इतनो पत्थर दिल भी मत बनो। ठीक है, मैं नहीं करता तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती, पर शादी के बाद मेरा हक होगा। तुम शादी करना चाहती थी ना? चलो कल बिना करते हैं। आंशी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने विधिक का हाथ खुद से दूर किया और लैंप बंद करके कंबल ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगी। विधिक जबरदस्ती उसके पास आकर लेट गया। वो जानता था कि आंशी कोई न कोई हरकत जरूर करेगी, जबकि आंशी भी उसके सोने का इंतजार कर रही थी, इसलिए उसने उसे नहीं रोका। विधिक के आंखें बंद थीं। आंशी ने आंख खोलकर अपना हाथ उसके आसपास घुमाया, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। चेक करने के लिए आंशी ने उसके माथे पर हल्का सा किस किया, पर फिर भी विधिक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आंशी धीरे से उठी और हाथ में एक डंडा लेकर आई। वो विधिक के सिर पर वार करने वाली थी, तभी विधिक ने डंडे को पकड़कर कहा, तुम अभी इस फील्ड में नहीं आई हो बटरफ्लाई, तुम्हें सच में ट्रेनिंग की जरूरत है। विधिक उठकर आंशी के पास आने लगा। आंशी ने अपने मार्शल आर्ट दिखाते हुए उसके पेट में जोर से लात मारी। विधिक कुछ कदम पीछे चला गया। आंशी का नया रूप देखकर वो पागलों की तरह हंस रहा था। मुझे इतने से कुछ नहीं होगा, तुम गोली भी मार दोगे तब भी मैं उठकर तुम्हारे ही पास आऊंगा, पर लगता है तुम अब प्यार से नहीं मानने वाली। अचानक विधिक का चेहरा गंभीर हो गया। उसने आंशी को पकड़ा और कुर्सी पर ले जाकर बांध दिया। आंशी ने बीच बीच में हाथ पैर चलाने की कोशिश की, पर विधिक के आगे सब व्यर्थ था। मैंने शाहिद को 2-3 दिनों में शादी की डेट निकलवाने को बोल दिया है, तब तक तुम ऐसे ही रहोगे मेरे आंखों के सामने। विधिक उसके पास बैठा बोल रहा था, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, बस अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए मुझसे शादी करना चाहते हो। मुझे अच्छे से पता है तुम आज से पहले मुझ जैसे कई लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा चुके हो, उनकी बॉडी का यूज किया और फिर उन्हें छोड़ दिया। मेरे साथ भी तो यही करोगे, पहले प्यार जताओगे और अपना मतलब पूरा होने पर मुझे मार कर फेंक दोगे। आंशी की बातें विधिक को गुस्सा दिला रही थी। वो अपना आपा खो रहा था। उसने आंशी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगाया। आंशी के वोंट के साइड से खून निकल रहा था। दर्द से उसकी आंखों में आंसू थे। आंशी की आंखों में आंसू देखकर विधिक ने कहा, मैंने कहा था मुझे गुस्सा मत दिलाना, अंजाम हम दोनों को भुगतना पड़ेगा। जिस हाथ से विधिक ने आंशी को थप्पड़ मारा था, उस हाथ को वो पागलों की तरह दीवार पर पंच कर रहा था जब तक कि उसके हाथों पर खून नहीं आ गया। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज, आंशी रोते हुए बोली, तुम मेरे जीने की वजह हो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। वो 8 महीने मैंने कैसे बताए हैं, एक बार शाहिद से पूछना, हरलीन बुआ तक मुझसे बात नहीं करती, उन्हें लगता है कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, और जब बाद में उन्हें पता चलेगा तुमने मुझे यहाँ कैद करके रखा, मेरे ऊपर हाथ उठाया, जबरदस्ती शादी की, तब कौन सा वो तुम्हें कौन सा अवार्ड देने वाली है। मैंने कहा ना, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, मुझे तुम्हारा मुंह बंद करना होगा, वरना तो ऐसे ही अनाप शनाप बोलती रहोगी और गुस्से में मैं कुछ कर बैठूंगा। विधिक अंदर कमरे में गया और टेप ढूंढ कर लाया। उसने आंशी के मुंह पर टेप लगा दी। वो बोलने के लिए छटपटा रही थी।
विधिक वहीं आंशी की गोद में सर रखकर उसके पास में लेट गया। मेट की सिखाई ट्रेनिंग आंशी के कोई काम नहीं आ रही थी। यहाँ उसके आसपास कोई नहीं था जिससे वो मदद ले सके। विधिक के आगे उसकी सब मार्शल आर्ट ट्रेनिंग भी फेल हो रही थी। आंशी ने अलग तरीका अपनाने का सोचा। उसने अगले 2 दिन तक उसने कुछ भी नहीं खाया पिया, हालांकि मेट ने उसे ऐसा करने से मना किया था। उसने यही सिखाया था कि किसी भी बड़ी लड़ाई से पहले खुद को तैयार करना जरूरी होता है, पर विधिक का विरोध करने के लिए उसे यही रास्ता सुझा था। विधिक ने उसे हर तरीके से मनाने की कोशिश की, पर आंशी की हालत अब कुछ भी ना खाने पीने से बिगड़ रही थी। वो वहां से भागने की कोशिश में खुद को घायल भी कर चुकी थी। उसके माथे पर चोट लगी थी और घुटने भी छिल गए थे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ बटरफ्लाई, मुझे मजबूर मत करो और खाना खा लो। विधिक खाना लेकर उसके पास बैठा था। आंशी ने ना में सिर हिलाया। आंशी की जिद के आगे वो वैसे ही काफी कुछ कंट्रोल कर रहा था, पर अब उसके लिए अपना गुस्सा कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। उसने आंशी के मुंह से टेप हटाया और जबरदस्ती उसके मुंह में खाना ठोसने लगा। आंशी को इन सब से बहुत तकलीफ हो रही थी और उसे उल्टी भी हो रही थी, फिर भी विधिक ने जबरदस्ती उसे खाना खिला ही दिया। मैं जीत गया, उसे खाना खिलाने के बाद विधिक ने कहा, और आगे भी जीतूंगा। ये 3 दिन हम दोनों के लिए भले ही मुश्किल रहे हों, लेकिन तुम्हें भी समझ आ गया होगा कि तुम मुझसे दूर नहीं भाग पाओगी। बेहतर होगा प्यार से घुटने टेक दो बटरफ्लाई, वरना गुस्से में मैं बहुत वाइल्ड हो जाता हूँ। गलती तुम करोगी और भुगतना हम दोनों को पड़ेगा। आंशी को समझाने के बाद वो अंदर चला गया। आंशी वहाँ बैठी बैठी रो रही थी और मेट को याद कर रही थी। इस वक्त कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। वो मेट की कहीं हर बात याद करने की कोशिश कर रही थी ताकि कहीं उसे कुछ मदद मिल सके। मेट की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। कई बार हमें हालात के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं आंशी, हो सकता है तभी तुम्हें भी ऐसा करना पड़े। सामने वाले को वो दिखाओ कि तुम उसके आगे झुक गए हो, पर झुकना कभी मत, कोशिश करना कभी मत रोकना। क्या पता कौन सी कोशिश कब कामयाब हो जाए। कोई अकेले में अपने काम को अंजाम देता है इसका मतलब अकेलापन उसकी ताकत है। विधिक जैसे लोग अक्सर पब्लिक प्लेस में कुछ नहीं कर पाते। पब्लिक प्लेस में वो कभी तुम्हें मिले तो तुम कैसे भी रास्ता बदल सकती हो, या हो सकता है कि अकेले में तुम्हें वो मिले तो तुम्हें उसे कैसे भी करके पब्लिक प्लेस पर ले जाना होगा। मेट की बातें सोचते हुए आंशी को रास्ता मिल गया था। विधिक जब वापस अंदर आया तो आंशी ने अपना मुंह खोलने का इशारा किया। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, आंशी ने रोते हुए कहा। और तुम्हें लगता है अब मैं तुम पर यकीन कर लूँगा, विधिक ने मुस्कुराकर कहा। तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, आंशी ने इतना ही कहा और चेयर के पीछे अपना सिर टिकाकर आंख बंद करके लेट गई। उसने सही कहा था, विधिक के पास उसका यकीन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। आंशी को खोलने से पहले विधिक ने एक नज़र उसकी तरफ देखा। वहां से भागने की कोशिश में उसने खुद को पूरी तरह जख्मी कर दिया था। वो आंशी को खोलने लगा। मैं तुम पर यकीन कर रहा हूँ और हम थोड़ा रुक कर शादी करेंगे, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है और तुम्हें केयर की ज़रूरत है। उसे खोलने के बाद विधिक ने उसे अपनी गोद में उठाया और कमरे में ले जाने लगा। वो उसे लेकर बाथरूम में गया और बाथटब में पानी भरकर उसको उसमें लेटा दिया। बंधे होने की वजह से वो नहाई तक नहीं थी, विधिक बस उसे कुछ ज़रूरी कामों के लिए ही खोलता था। मैं बाहर हूँ, जब तुम्हें ठीक लगे तो मुझे आवाज़ दे देना, मैं आ जाऊँगा। आंशी के जख्मों पर जब पानी लगा तो वो दर्द से चिल्लाई। उसे तकलीफ में देखकर विधिक को भी बुरा लग रहा था। मैंने कहा था, इतना समझाया था कि कुछ भी मत करना ऐसा जिससे दोनों को तकलीफ हो। ये लड़कियां इतनी जिद्दी क्यों होती हैं? जैसी भी है मेरी है और मुझे उसे प्यार से समझाना होगा। हर बार मैं इसे तकलीफ नहीं दे सकता। कुछ देर बाद आंशी नहा कर बाहर आ गई। विधिक ने उसकी तरफ देख कर कहा, तुम बहुत कमजोर लग रही हो, तुम्हें पहले खुद को फिर से ठीक करना होगा। आंशी ने हाँ में सिर हिलाया। अगले एक हफ्ते तक विधिक आंशी की हर तरीके से देखभाल कर रहा था, जबकि आंशी भी ऐसे जता रही थी जैसे अब वो उसकी बगावत नहीं करेगी। आखिरकार वो दिन आ गया जब विधिक और आंशी शादी करने वाले थे। विधिक ने ब्लैक टैक्सीडो पहना था जबकि आंशी ने व्हाइट इवनिंग गाउन। उसने साथ में डायमंड ज्वेलरी पहनी और सिर पर डायमंड टियारा लगाया था। विधिक ने उसे तैयार किया था। उसके तैयार होने पर विधिक ने उसके माथे पर हल्का सा किस किया। आई लव यू सो मच बटरफ्लाई, आगे से ऐसा मत करना। मैं वही विधिक हूँ जिसके बिना तुम 6 मिनट भी नहीं बिताना चाहती थी। उसके बाद शादी के लिए वो दोनों चर्च गए थे और वो आंशी के लिए अच्छा मौका था। वहाँ आने से पहले उसने अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट साथ लिए थे और विधिक के नज़र हटते ही वहाँ से ओझल हो चुकी थी। एक बार फिर विधिक आंशी को खो चुका था और इसमें उसकी खुद की गलती थी। सटा सट।